वो देखते हैं कि दूरी इनकी भावना से कैसे भी भगवान के दरबार में कुछ आ जाए, भगवान के चरणों में, तो इनके थोड़ा कल्याण होगा। इस बहाने साधु को जाने का भी तो होता है।
पर खिचड़ी क्यों?
खिचड़ी से अन्न का मंथन से अन्न का कमी कभी नहीं होता है। अन्न है ना, अन्न में सबसे बड़ा भी रस है, भगवान का प्रिय है अन्न। सबसे सबसे पहले जौ निकला था लक्ष्मी देवी भगवान के, जब प्रसादी फेंका इस जगत में जगत के जीवों के लिए, तो पहले तो जब लोग खाते नहीं थे कुछ, तब ये अन्न हुआ। बहुत अत्याचार है छोड़ो, तब ये अब विचार आता है मन मन, ये मनसा देवी, कृष्ण ने बोला ये मनसा देवी है, गंगा है मनसा देवी, वहाँ मनसा देवी का मंदिर है। तो ये है कौन भाई, जो कृष्ण के मन से निकला है वो कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी, और दूसरा तो कोई है नहीं, श्रीमती राधा रानी स्वयं। देखा ब्रजवासियों की कृपा करने के लिए, समस्त लोगों को गिराज की कृपा करने के लिए, अपने कृष्ण के मन से निकल करके गंगा के रूप में सबको स्नान करा दिया। इसलिए वो गंगा की अपेक्षा इस गंगा की महिमा और वो खरब गुण ज्यादा है। किंतु देखो विद्यता की माया, हमारा दुर्भाग्य, इतना चेष्टा करने पर भी किसी साहब तो चेष्टा किया, इच्छा मात्र किया, महाराज की इच्छा जागृत हो, चलो मैं कार चल, तू मेरे साथ चल।
यहाँ मूर्त होता हो तुम उसके अंदर स्नान करो।
महाराज जी ले गए मुझे, अच्छा कल मैं स्नान कर लूँ, फिर गाड़ी में लौट के आए। उसके पहले मैं खुद गया था आप लोगों को लेके, एक बार आप लोगों को लेके गया था ना, कहाँ स्नान किए थे? वो चक्र सिंह महादेव जी के वहाँ से गया था, मकर में गया था। हाँ तो ऐसा छोड़ लो, किंतु अब चेष्टा करने पर भी
तो मुहूर्त होता हो
स्नान, तो मुहूर्त होने पर भी आज के दिन में तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते। आज तो समय 4 बजे तक था
शाम को,
किंतु भाग्य नहीं है तो क्या करे, सोचते सोचते रह जाते कुछ होता है। इसलिए वो इस दिन श्रीमती की कृपा सबने प्राप्त किया, प्राप्त करके सुंदर अनुगत में और गिरिराज जी, इसलिए अब तो मेरे को स्नान करना है। और गंगा दशहरा, गंगा माता गोस्वामिनी है ऐसे ही भगवान जगन्नाथ के चरणों तक, उनको क्षेत्र गंगा जहाँ है ना, आज नहीं वो दशहरा के दिन, वो भी आज के दिन मकर संक्रांति के दिन, वो भी आज मकर संक्रांति गंगा सरा स्नान करने जाना चाहती थी। तो जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा निकले और बैगर भी उल्टा वहाँ पहुँचे मंदिर में, आज के दिन की बात है।
आज के दिन तो नहीं हुई, तो कक्षा हमारे उसमें दिया नहीं।
हाँ वहाँ गंगा माता गोस्वामिनी की आविर्भाव तिथि है, गंगा दशहरा, गंगा माता गोस्वामिनी की आविर्भाव। तो ये आज श्वेत गंगा का आविर्भाव हुई, आज श्वेत गंगा का आविर्भाव मैं बोल रहा हूँ। आज के दिन में गंगा माता गोस्वामिनी जो भगवान के प्रिय है ना, वो भी सोच रही थी मैं वृद्धावस्था में कैसे जाऊँ गंगा सागर। सोचो अब गोड़े बच्चों की सोचो, जो ब्रजवासी सोचते हैं गंगा सागर जाने की, हम लोग कौन से जी पिछा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाए? ये बात सोचने की होता है ना, गुरुवर को क्यों माना करते हैं, कुछ कारण है माना करने की? नहीं माना नहीं करते,
मतलब
उसने सुना पाठ में सुगन गुरु ने कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, लोगों ने खूब बिगड़ गए, वो बोले काटी में शांत हो जाते जो जाते हैं, उल्टा पुल्टा बोला उन्होंने, सब लोग मुझे शिकायत किया, कुछ लोगों ने बड़े दुखी हो गए, बोले ऐसे साधु हो गए क्यों निंदा करते हैं, सारा विश्व गंगा सागर जाता है ये क्यों निंदा करते हैं पाठ के अंदर में, और पाठ में कोई आता नहीं। अब मुझे आज नॉर्मली बोलता है मेरा पाठ में कोई नहीं आता, मेरा पाठ नहीं सुनता, ऊपर पाठ करते 3 टाइम वहाँ पाठ, क्या होता है कि सिद्ध गंगा जी चेष्टा करने से गंगा माता गोस्वामी के ऊपर से बात करके, जब उनका नाम पड़ा गंगा माता गोस्वामी, उसके पहले नाम था कृष्ण प्रिया, तो वो जगन्नाथ जी चरणों में पहुँच गए। तो जो गंगा सागर में स्नान करेंगे वो निश्चित रूप में भगवान के चरण पाएंगे, तो भगवान से दे दिए, यहाँ स्नान करेंगे तो साक्षात कृष्ण कृपा गिरिजा जी कृपा पाएंगे, ब्रजवास पाएंगे, और वहाँ स्नान करेंगे तो जगन्नाथ जी को प्राप्त कर लेंगे। बताओ इससे भगवान जी आज के दिन का क्या मन में हो सकता है, तो आज के दिन क्यों नहीं मनसाया जाए? इसे ब्रजवासियों ने सबने मनसाया, कृष्ण की भला हो, कृष्ण की कृपा हम पाएंगे, इसे आज के दिन में मन समझना चाहिए जो कुछ मत है आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ संकल्प करता हूँ आज कृष्ण की भक्ति मेरी प्राप्त हो मन मन संकल्प कर ये भी पूरा हो जाता है कुछ नहीं बाकी रहता सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो ये गंगा जी की आज अर्घ्य की थी वो है गंगा जी को देखो मन में चिंता किया वही अग्रोत हो गए इतना भद्री बात है गंगा जी सर्वत्र क्या है अपाचित है और हम लोगों ने कहाँ देखा भगवान दास जी के बाबा जी महाराज के आप तो कालना में याद है गंगा जी को कहाँ से गंगा जी आ गई चिंता कर सकते एक फुट कितना तीन फीट तीन फीट ढाई फीट दो फीट भी नहीं हुआ सर मन पानी भरा हुआ और बरसात के दिनों में तो स्रोत गंगा जी में बढ़ जाता है तो लेवल लेवल में हो जाता है बढ़ता नहीं आश्रम को नहीं डूबता है स्रोत नहीं डूबता शाम करते निर्मल पानी गंगा जी का पानी किचड़ हुआ या किचड़ नहीं हुआ इसलिए गंगा जी कहाँ नहीं आगे होते वहाँ वहाँ पर उसने कहा परमानंदपुरी के वहाँ गंदा पानी सब लोग पी नहीं पाते परमानंदपुरी बड़े दुखी थे कोई आता थोड़ा पानी नहीं दे पाते एक दिन महापुरुष कितने के साथ में परमानंदपुरी लोगों के दर्शन करने आए तो परमानंदपुर बहुत खुश हुए किंतु सबको प्रसाद जो कुछ भिक्षा का अन्न दिया पानी नहीं दे पा रहे थोड़ा थोड़ा पानी दिया महापुरुष बोले आपके दुख क्या है कितने दुखी हैं दुखी तो कुछ नहीं कुएं का पानी थोड़ा सा गंदा है मैं आप लोग के अपेक्षा नहीं कर पाता अच्छा आपके कुएं में गंदापन गंगा जी को बुलाया गंगा जी आओ अभी गंगा जी उसमें विराजमान हो गए इसलिए गंगा जी ऐसे हैं उनको आप चिंतन करने से जैसे सूर्य ने पहले बताया वरदान में मैं सब रस प्रदान कर सकता हूँ किंतु सरस नहीं बना सकता किसी जैसा जड़ रस है अपना की तो भगवत रस जब तक दीपान नहीं करेगा तब तो बहुत लोग में पहुँच नहीं सकते इसलिए गंगा जी का आना जरूरी है तो गंगा जी को ले आए भगीरथ कृपा करके समस्त त्रिलोकी को पवित्र कर रहे हैं ऐसे गंगा जी की महिमा जो कीर्तन नहीं करते गंगा जी की पान नहीं करते गंगा जी में स्नान नहीं करते गंगा जी में बात नहीं करते तो उनका क्या होगा महारदी बचपन से गंगा स्नान करते आखिर में नवद्वीप जब तक थे तब तक गंगा स्नान करते महाराज कृष्ण तो कहते हैं इसे गंगा के बिना बताते ना हमारे अर्चन करने जाएंगे तो पहले ही मंत्र करना पड़ेगा गंगे से जमुने से भगोदा आगे जमुने से बने आगे गंगे से
अच्छा उसके से राधा के अधिक श्रेष्ठ महाप्रभु है तो फिर जमुना जी से श्रेष्ठ गंगा जी नहीं होगी
ये तो बात हो गया अब मैं वर्णन करूंगा महिमा गंगा जी तो महासुभद्रशाली नहीं वो इतने श्रेष्ठ हो गए अब करीजी को गंगा जी महासुभद्र पाया अब बोलूंगा मुंह से ज्यादा कह देंगे मुंह से ज्यादा कह देंगे मैं जानता हूँ कि साधन भद्र जी नहीं समझेंगे ना जमुना देवी अपनी जगह पर है गंगा जी अपनी जगह पर है गंगा जी सुभद्र शादी में इसलिए आज मानुष गंगा के महात्म में और गंगा सागर के महात्म में हृदय में गंगा जी जागरूक भगवत चरणामृत भगवत रस हमारे हृदय में आए गंगा जी का पान गंगा जी का स्नान गंगा जी का स्मरण बोलते गंगा का स्नान जमुना जी का पान इसलिए कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे तो सारा इंद्रियों से पाप करते हैं ना हमारा इंद्रिया शुद्ध होते हैं और जमुना जी का पान करने से क्या होगा जमुना जी कृपा हो जाएगा जब भक्ति प्रकट होगा तब शरीर शुद्ध हो जाएगा ठीक है साढ़े आठ बज गया होगा कितना टाइम करने भगवान क्या रखना है रघुनाथ दास जी
और
नहीं उसके नहीं रघुनाथ दास जी संग जिस वंश में हमारे लिए वो
श्रेष्ठ
है हमारे लिए सबके प्रति कारना करने ना कृष्ण कृष्ण बोले और जय चैतन्य से जिनेवेश हमारे सबके प्रति भक्ति के विरोधी और भजन के विरोधी लोगों को भजन से अलग करने की कोशिश करते मुझे तो इनके भावना था सब समय जो तीव्र नहीं रहे अभिभूत होते हैं हृदय में प्रतिदिन तो उनके गुणगान कीर्तन करते हैं, किंतु उसमें वो टेस्ट स्वाद बद्ध जीवों के लिए आता नहीं है, किंतु विशेष स्थिति में कुछ स्वाद आता है, टेस्ट उसमें लगता है। जो मालूम है बताते हैं, प्रतिदिन भगवान के प्रसाद होता है उत्सव आदि दिनों में, वही व्यक्ति वही रसोईया वही वस्तु वही का सब कुछ, किंतु उसमें कुछ प्रतिभा का प्रकाश हो जाता है, कुछ उसमें अलग ही तत्व प्रकाशित होते हैं। और वही व्यक्ति रोज दिन का है, जिस दिन उसको दूल्हा बना दिया जाता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, और एक साथ में घोड़सवार होकर के राजा बनता है। इस प्रकार से ये सब साधारण उदाहरण है, किंतु गुरु वैष्णव के समय ऐसा नहीं। उनके समय कैसा है कि गुरु वैष्णव आविर्भाव और तिरुभाव, तिरुभाव भी आविर्भाव है, आविर्भाव भी आविर्भाव भी है। क्यों? पद्म जीवों के लिए आविर्भाव भी तिरुभाव है, और मुक्त जीवों के लिए तिरुभाव भी आविर्भाव है। कैसे? अभी जगत में वैष्णव का आविर्भाव है, बद्ध जीव के लिए क्या है? उनके लिए क्या है? तो संबंध है, मतलब है, तो देना भी चाहते हैं, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। और मुक्त जीवों के लिए, मुक्त जीवों के लिए क्या है? मुक्त जीवों के लिए भगवान की तिरुभाव है, किंतु देख रहे हैं वहाँ आविर्भाव है, कहाँ? नित्यलम, वहाँ मुक्त परिकारों के साथ आज बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों? बहुत दिनों के बाद में अपने शांत मिला और अपने प्रिय व्यक्ति मिलने से कितना आनंद उत्सव होता है वहाँ। इसलिए उस तिरुभाव स्थिति में सम्मिलित होने से वो शक्ति आनंद उत्सव हमारे हृदय में आविर्भूत होता है, उसका अनुसरण करने से। जो नहीं करता है, अवज्ञा करता है, उसके हृदय शुष्क हो जाता है। इसके लिए आविर्भूत स्थिति में जगत में आविर्भूत हुए हैं, उस स्थिति की भी वंदना करने से, आज भगवान की कृपा शक्ति लेकर के वो लोग जो जगत में आए हुए हैं, इस स्थिति को अवलंबन करके भगवान क्या कहते हैं, हो मैंने जिसको भेजा उनका आदर हो रहा है, स्वागत हो रहा है, सबको मैं कृपा करता हूँ। वैष्णव का आविर्भूत पालन करने से भगवान कृपा करते हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भगवान जन्मतिथि जमत पवित्र वैष्णव जन्मतिथि श्रीमत चरित्र। भगवान की जन्मतिथि में पालन करना चाहिए, क्यों? मुझे कृपा के लिए। ऐसे वैष्णव को तिथि पालन करने से आविर्भाव तिथि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अहो ये जो सम्मान मेरे पार्षदों को कर रहे हैं, मेरा सम्मान है, मेरे आदर करते हैं। अच्छा चलो इसको मैं क्या दूँ, जो लाख जन्मों में नहीं मिलना था एक दिन में दे दूंगा। किंतु कैसे आदर करना चाहिए उसके लिए दो प्रकार के हैं, एक गौण एक मुख्य। गौण रूप में क्या है? विभिन्न प्रकार आड़म्बर पटुकरण के साथ में मंदिर सजाया, फूल माला ले आए, विभिन्न प्रकार के विचित्र महाप्रसाद बनाया, किंतु प्राण नहीं है उसमें। जब तक कि किसी व्यक्ति के निकट में आप परिवेशन करना नहीं सीखा, सब बेकार है। कैसा परिवेशन? परिवेशन भी दो प्रकार के, एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, कैसे? एक रोटी खाया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, धैर्य के साथ में, एक बार सब्जी दिया, इतना देकर के भरने, इतना दिया, फिर दोबारा दिया, अच्छा लग रहा है, एक बार जा करके दिया, पूछ करके। ये नहीं कि गाय, गुरु महाराज बोलते हैं भैंसों के लिए गायों के लिए जैसे नाद में भर देते हैं, इतना भर करके लाया, ये खाने की चीज होता है? अरे अच्छा होगा, फिर दोबारा दिया जाए, इतना धैर्य नहीं है। अच्छा ये तो वैदिक परिवेशन है, किंतु एक परिवेशन दूसरा चीज है। हम गुरु वैष्णव के उस चरित्र, उस महाप्रसाद को अर्थात कृपा को इस प्रकार से संग्रह करके अपने ढो करके ले जाएंगे, समस्त जीवों के हृदय में उस परिकथा को, कृपा को परिवेशन कर देंगे, जिसके ग्रहण करके जीव प्रफुल्लित आनंदित रहेगा। वो ऐसे महापुरुष के आविर्भाव तिथि को मैं तो जानता नहीं था, ये महापुरुष हैं, ऐसे हैं, मैं तो समझ नहीं पाता था। धन्य है
आपने आज बड़ा भारी सुंदर सुचारू रूप से सुनिश्चित रूप से परिवर्तन किया, हम तो जानते नहीं थे। श्रद्धा उत्पन्न हो गया है और उनके प्रति विश्वास हो गया, और विश्वास होकर के वो उनके चरणों में अपने को उसी दिन उछावर कर दिया। नहीं तो क्या होगा, खा पी करके मस्ती मार करके चले जाने से कौन सा कृपा होगा, किसी जन्म में कभी कृपा होगा नहीं, भी हो सकता है। क्यों, हमसे माफी सब तो ज्यादा और को मिल जाते हैं, गुरु के थाली में भी प्रसाद देकर खाने से भी नहीं होगा। यदि महिमा ने उस महाप्रसाद की और गुरु की महिमा यदि हम नहीं जानते वैष्णव की महिमा नहीं जानते, इसलिए वो परिवेशन वो अनुष्ठान सुचारू सुंदर है। जहाँ भी ऐसे सही कथा गुरु वो किसके होगा, जिसने गुरु की उचित खाया, जिसने गुरु की उचित खा करके उसका आस्वादन किया है, वो तो दूसरे को दे सकता है, उसका स्वाद अनुभव है। जिसको स्वाद ही अनुभव नहीं है वो क्या बोलेगा, क्या देगा, बहादुरी क्या श्लोक दिखाने से बहादुरी हो जाएगा, बड़े बड़े बात करने से हो जाएगा, इतना भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों बोलते हैं, एक हाथ तो गले में और एक हाथ पैर में, हमारे बांग्ला में है कि ओ ऐसे दंडक कर रहे हैं और दूसरे हाथ गले में है। क्यों, एक शिष्य होता है, उनके आचार विचार उनके आदर्श उनके प्रति श्रद्धा तो नृत्य भरने लोगों से प्रतिष्ठा कमाने के लिए बड़ा भाई आलम्बर रखा है, गेट सजवा दिए, माला की बोछार लगा दिया, बड़े बड़े भंडारा कर दिए, जो नहीं करना वो भी कर दिया, किंतु गुरु के आदेश मानने के लिए विचारों को पालन करने के लिए या उनके एक भी आशीष जनों को श्रद्धा करने के लिए हृदय में यदि जगह नहीं है तो हम गुरु को क्या श्रद्धा करते हैं। गुरु के आशीष जन वैष्णव जनों को यदि हम आदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का आदर करते हैं वैष्णव का आदर नहीं करते, भगवान के जनों का आदर नहीं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कभी संभव नहीं है। इसके लिए बताया, जिनके हृदय गुरु के उचित भोजी बने हैं और गुरु के प्रसाद प्राप्त किए हैं, वो जब वितरण करेंगे तब देखेंगे नाराज नहीं होंगे, कोई बिगड़ता है क्रोधी है। महाराज मुझे एक बात बोले, बहुत दिन की बात है, कोई तुम्हारे पर नाराजी हो गया, तुम जो परिवेशन करोगे ना, मेरे हाथ में तो परिवेशन सारा जीवन था, अभी तो ये लोग कर रहे हैं, मैं चुपचाप कुछ बोलता नहीं, किंतु परिवेशन करते समय तुमको एक आंख से नहीं करना, कैसा भी व्यक्ति है उसको अच्छे से अच्छा अपने थाली में नक मत रखना, सबको खिला पिला कर बच्चे तो खाना नहीं तो नहीं खाना। अब मैं देखता हूँ महाप्रसाद का जय नहीं देते हैं बहुत ऐसे, कल सुबह प्रसाद पाने गए महाप्रसाद तो जय भी नहीं दिया। अरे थोड़ा गुरु वैष्णव को थोड़ा स्मरण करो, महाप्रसाद को जय दो, इसलिए मुझे बाध्य होकर बैठना पड़ता है, हमारा ऐसा आदत नहीं था कभी जीवन में नहीं था। महाप्रसाद की स्तुति नहीं करे, गुरु का जय नहीं देगा, वैष्णव को जय नहीं देगा तो क्या करे, गड्ढा भरने गया, भैंस का जल है, उचित नहीं। इसके लिए जो गुरु के उचित प्रति दास है वो परिवेशन करना सीखेंगे सुचारू रूप से, कोई बिगड़ा हुआ है उसको भी प्यार करके उसको भी बुला करके गुरु की कथा सुनाएंगे और उनको भी धीरे 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 आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जीवों का तो रुचि है नहीं, किसी जीव का रुचि नहीं है। अब स्नेह करके यदि मैं बोलूँ भाई सब लोग आओ खरी कथा होगा, नहीं आएंगे, क्यों बता जी, तो इसके बिगड़ने से काम चलेगा, अपना चित्त खराब करने से होगा, नहीं होगा। श्रवण कीर्तन जले करे चिंतन, सब सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ समझ गया अब क्या जरूरत है। तो यदि पानी यदि अधिक भी हो गया ना तो पेड़ सड़ जाएगा, समुद्र के भीतर पेड़ नहीं उगते हैं और रेगिस्तान में भी पेड़ नहीं उगते हैं। पानी क्या मात्रा कहीं है, कहीं से सिंचन करना होगा, वो भी जानना होगा कैसे करना है। इसके लिए गुरु वैष्णव की सभी उनकी पूजा अग्रभाग की मनाया जाएगा, जिस दिन हम उनकी गुणावली चरित्रावली धैर्य के साथ में उत्साह के साथ में सब लोगों को एकत्रित करके परिवेशन करना सीखेंगे। प्रभुपाद सत्य ठाकुर बताते हैं, जबकि गोरक्षण दरबार जी महाराज जी के तिरुभाव तिथि आविर्भाव तिथि या प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि व्यस्त पूजा के दिन प्रभुपाद ने भाषण दिया। तो कैसे भाषण दिया? सब वैष्णव शिष्य है ना, सबको सम्मान करते हुए गुरु पादों को शास्त्र में दंडवत प्रणाम करके सब शिष्य को सम्मान पूर्वक संबोधन करके आप लोग हमारे विपद उदाहरण बांधव है, आप लोग यदि नहीं होते मैं भगवान की कथा कीर्तन करने की और तो भगवान गुरु की कथा कीर्तन करने गुरु की सेवा करने की सुयोग नहीं मिलता। आप लोग मेरे लिए सेवा का सुयोग दिए हैं, आप लोग भी धन्य की धन्य है, आप लोग गुरु के और भगवान के वैभव हैं। ऐसी नम्रता पूर्वक जीवों को सुचारू रूप से ऐसे परिवेशन करते थे, उस परिवेशन से तृप्त होकर के कोई जीवन को छोड़कर के कभी जाते नहीं थे, कभी भूल नहीं सकते थे प्रभुपाद को। पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे एक बार प्रभुपाद दिया एक शब्द सुन लिया तो प्रभुपाद को भूल नहीं सकते, क्यों सच्चे परिवेशन करने वाला है। हम लोग तो धैर्य नहीं है और गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, आप लोग अब तिरुभाव जानते नहीं है किसे कहते हैं है? ये जानते हैं व्यस्त पूजा हो रहा है, है? और खूब ढकढाल करके खाया पिया मस्ती किया बस चल दी, किंतु हमारे गुरुवर्ग ऐसा नहीं। मैं बहुत बार महाराज जी को बोला महाराज जी दो बज गया अभी तो घंटे नहीं बजते प्रसाद नहीं पाएंगे तबीयत तो खराब हो जाएगा। महाराज बोले मैं प्रसाद खाते खाते मैं तृप्त हो रहा हूँ और सबको प्रसाद खिला रहा हूँ, तुम्हें क्या चिंता किया दो बज गया, सुबह परिवेशन किया दोपहर को 10 बजे बैठा 2 बजे उठा 3 बजे उठा शाम को 5 बजे आए रात के 9 बजे उठा है? इतना शरीर अवस्था लेकर के तो उनका परिवेशन सच्चा परिवेशन है। आनुषंगिक रूप में जीवों के लिए महाप्रसाद वितरित होता है, वो भी उनके कृपा शिक्षक सभी कहीं जाकर के वो भी अच्छे से अच्छे बनते हैं। इन सब बातों को हृदय में धारण करना होगा, नहीं तो केवल मात्र बाइक आलम्बर अनुष्ठान लेकर के चलने से काम नहीं चलेगा कभी भी। जैसे किसी से हम लोग ठाकुर ठाकुर जी के आविर्भवन तिरुभाव तिथि मान रहे थे और समस्त तिथियाँ आते हैं हम लोग चेष्टा करते हैं इस प्रकार से परंपरा कभी छोड़ना नहीं। कैसे अकेले भी होंगे अकेले कीर्तन करेंगे श्रवण करेंगे उनका गुणावली, एक जने होंगे ठीक है, दो जने होंगे 10 जने होंगे बहुत अच्छा बात है, किंतु क्या करें हम लोगों का मेरा भी दुर्भाग्य है। नहीं तो ऐसी स्थितियों में महाराज क्या करते हैं वैष्णव को बुलाते सबको खाता दे तुम बोलोगे तुम बोलोगे तुम बोलोगे कीर्तन करोगे सुजुग देते हैं ना। हम लोग यदि ऐसा उत्साह धैर्य रहेगा हम लोग का जीवन बनेगा, हम नहीं रहेगा तो कहाँ से जहाँ हो जाएंगे हम लोग, इससे हम लोग खुद ही सुखी नहीं होते। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव तिथि है नाग पंचमी, आज के दिन में पहले तो बहुत श्लोक आया और श्रीमद् भगवद गीता से उन्होंने एक श्लोक उठाया क्या कि देवताओं को कोई भी देवता मंदिर में जाओ देवता लोग सामने पड़ जाए उसको प्रणाम ही मत करो, प्रसाद तो खाना दूर रहे इसको जाओ नहीं, यदि बैरी में जाना पड़ा तो उसको प्रणाम ही मत करो, अगर प्रणाम कर ले गलती से प्रसाद दे प्रसाद निर्माण ग्रहण मत करो, पिता का श्राद्ध मत करो, कोई भी श्राद्ध कार्य मत करो, श्राद्ध मत खाओ है। एकांतिक भक्तों के लिए सब नियम दिया, किसी को यदि कल्याण को चाहता है तो 1 पेज से लेकर 100 पेज तक पढ़ लें तब गोपाल भट्ट गोस्वामी की विचार समझेंगे वैष्णवता किसे कहते हैं, वैष्णव राज्य में तब प्रवेश कर सकेंगे। नहीं तो यदि ये नहीं पढ़ा ना किसी ने विचार नहीं जाना एकांतिकता आएगा नहीं और खिचड़ी बन जाएगा भक्ति होगा नहीं। एकांतिक भक्ति किसे कहते हैं पता नहीं होगा, ये तो बांग्ला में भी है कोई भी पढ़ सकता है सभी लोग। क्या बता रहे देखो कि ये जपन ना देवता भक्त जयंती श्रद्धा नहीं तो भी मार्ग कौन से जयंती अविधि पूर्वक हम शास्त्र गीता जी में दिया जो भी कोई भी देवता की उपासना करता है वो भी मेरे ही उपासना है, वो भी मेरा ही उपासना है वो दूसरे की नहीं है, प्रकांतर में मेरा उपासना फल मैं ही देता हूँ ऐसा बोल दिया। इस बात को लेकर के लोग भगवान की उपासना करते हैं और देवी देवता का उपासना करते हैं, देवी देवता करते हैं तो भगवान का हो जाता है, भगवान ने बोला गीता में देवी दुर्गा काली चंडी मंडी जो इच्छा करे भगवान की हो जाता है, ऐसा कहकर के लोग दुनिया को ठगते हैं, गीता का उदाहरण देते हैं। इससे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्लोक उठाया, उठा करके बोलते हैं भाई देखो शास्त्र की विधि को अनुसार मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। क्या ये अभिधि किंतु है क्या अभिधि पूर्वक? ये अभिधि कैसे हैं? तीन प्रकार का अभिधि है। क्या क्या तीन प्रकार के सब बताने। विष्णु भक्त पक्ष अन्य देवता पूजा निषिद्ध। पहले बतलाया कि विष्णु भक्त के लिए दूसरे देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपना माता पिता के सामने नौकर की पूजा नहीं होता है, इससे यदि गुरु खड़े हैं गुरु के सामने किसी साधारण व्यक्ति यदि स्तुति स्तव पूजा की जाए वंदना की जाए तो गुरु की अवज्ञा होता है। गुरु है, गुरु के सामने किसी का पैर छीना, दंड प्रणाम करना, किसी पूजा करना, किसी ऐसे जो कृष्ण के मंत्र से दीक्षा लिए हैं, कृष्ण सर्वोच्च सर्वेश्वरेश्वर है, उनके मंत्र दीक्षा लेने के बाद में किसी की और देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, शास्त्र का विधि है, निषिद्ध है। उस निषेध को अवहेलना करने से निषेध को अवहेलना मात्र करा है, है? अच्छा यदि विष्णु भक्त दूसरे की पूजा करते हैं तो ये विधि की अवहेला हुआ। अच्छा किंतु ऐसा अतिरिक्त अन्य कोनो प्रकार दोष विष्णु सेवा से प्रवेश करे ना, इसके अलावा क्या बता रहे हैं? किसी प्रकार के दोष विष्णु सेवा में प्रवेश नहीं करते हैं। अच्छा यह विष्णु सेवा होते एकांत विस्तृति घटना, इससे क्या होता है? एकांतिक विष्णु सेवा से कोई विस्तृति नहीं घटता है, तथापि यह अभिधि किंतु तब भी यह अभिधि है। यदि कोई कहता है देवता की पूजा की गया तो क्या मेरा एकांतिकता घट गया? तो बोलते हैं पहले बता दिया विष्णु भक्त के लिए किसकी पूजा करना निषिद्ध है, ये अभिधि हुआ। अच्छा इसलिए इसके ऊपर त्यज्य है, पहला नंबर दे दिया नहीं। दूसरा नंबर बता रहे हैं विष्णु भक्तिहीन अन्य देव उपासकगण विष्णु भिन्न अपरापर देवतागण के स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान पूर्वक तादर पूजा करे। जिन लोगों के अंदर में विष्णु भक्ति नहीं है, मानव देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उनको क्या ज्ञान करते हैं? यही भगवान है। विष्णु को नहीं मानते हैं, विष्णु की पूजा विष्णु को भगवान जानकर विष्णु की पूजा नहीं करके और देवी देवता को भगवान जानकर के उनकी पूजा वो लोग करते हैं। अच्छा वो क्या करते हैं और विष्णु का भजन तो करते नहीं है, ये सबसे बड़ा हमारा एक गुरु और अभिधि है, नाम अपराध है। और देवताओं को स्वतंत्र जान करके भगवान जान करके उनकी पूजा ये लोग करते हैं, किंतु भगवान को भगवान नहीं स्वीकार किया, इसी मठ में आया गुरु से दीक्षा चल ली तो गुरु को तो गुरु नहीं माना और को गुरु मान लिया, और की बात सुनता है, गुरु नहीं माना मतलब और की बात सुनता है, उनको मुझे चलता है जैसे वो कहता है उसकी कर रहा है, तो क्या होगा? गुरु का अवज्ञा हुई, ऐसे भगवान की अवज्ञा हुई। देवी देवता को भगवान मान लिया, उनकी तो पूजा करता है और स्वतंत्र दृष्टि जान करके वही आठवां या नौवां नाम पर तो पता है यह गुरुतर अभिधि, ये सबसे बड़ा बड़ी अभिधि है। ये अभिधि से कोनो क्रम में विष्णु सेवा है ना, ऐसे जो लोग करने वाले हैं उनको किसी तरह से उसके द्वारा विष्णु सेवा भगवत सेवा होगा नहीं, सुतरां अति निंदनीय और सर्वप्रकार परित्यज्य। इसलिए वो अति निंदनीय गलित कार्य है। वो यदि सोचते हैं कि उपासना करूंगा भगवान की पूजा हो जाएगा तो तुमको तो भगवान को भगवान मानना नहीं, तो उनकी पूजा क्या हुई ना? देवी देवता को तुमने भगवान माना, ये तुमने भगवान की पूजा किया, इससे परित्यज्य और निंदनीय। तात्पर्य क्या दिया? तीसरे नंबर मैं विष्णु का भी भजन करता हूँ और देवता की भी पूजा करता हूँ, तुल्य बुद्धि बराबर ज्ञान करके अथवा इतर शास्त्र सिद्धि उद्देश्य से पता है मैं विष्णु का भी भजन करता हूँ और देवता को भी ऐसी पूजा करता हूँ बराबर। ये क्या है? तो ये जो बराबर बुद्धि किया अपने शास्त्र सिद्ध की उद्देश्य से, ये अभी भी नामपराध इसको भी पढ़ते थे कि विष्णु का भजन करें और देवता का भजन करें, तो इससे क्या मतलब हो गया? माँ को और बेटा को भी भेंट कर लोगे, नौकर को और मालिक को भी भेंट कर लोगे, स्त्री को माँ को भेंट कर लोगे, है? भगवान भगवान है, देवी देवता की पूजा करने से भगवान की पूजा कैसे हो जाएगा? वो बराबर कैसे हो जाएंगे? ऐसा ज्ञान करने से होगा नहीं। अच्छा जो भी कहो, भगवान को भगवान ज्ञान करा, उनकी पूजा करा, और फिर उनके पूजा करने के बाद में और सबको पूजा किया, बोलते ऐसे भी नहीं करूँ। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं है, पेट में आहार पहुँच जाता है, हैं अंगुली बोलता है मैं पेट को तू मैं खा जाऊँ, खा सकता है? नहीं खा सकता है, कि हाथ और अंगुली पेट का ही अंग है, वो दूसरे का नहीं है। और मुंह यदि कहता है नहीं पेट को दूंगा नहीं, मैं रख लूँगा, इतना बढ़िया चीज राबड़ी रसमलाई जो कुछ मैं मुंह में रख लूँगा, किंतु क्या होगा उससे ताकत होगा? यहाँ तक रख लिया, ताकत होगा, बलवान जाएगा, भूख मिट जाएगा और उसके सब इंद्र को मिल जाएगा, क्या मुख को देने से नहीं मिलेगा? पेट को देना होगा, मुख से अंदर में देना होगा। इस तरह से किसी भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे या कुछ करने जाएंगे, जब तक भगवान की पूजा भगवान ज्ञान से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए इतना अच्छा। अब क्या बताते हैं गीता जी ने बताया, अहम ही सर्वविज्ञान भुक्ता थे प्रभुरे बचो, या भागवत में बताया कि सर्वाहरणम अच्युतज्ञा, इस तत्वज्ञान के अभाव से भगवान के सेवा और दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा जो करते हैं स्वतंत्र बुद्धि से, यही अभिधि है। क्यों ये नहीं समझते हैं, सुनते हैं इस शोक को तो ले लिया, उस शोक नहीं लेते हैं, भगवान बता रहे हैं अहम ही सर्वविज्ञान भुक्ता थे प्रभुरे बचो, मैं सब विज्ञों की भुक्ता हूँ, मैं सब सब कुछ हूँ, हम ही सर्वोच्च मत्त परम नाम किंची दृष्टि धनंजय, या बहुत श्लोकों में है, अभिजानंती मांगबड़ा मानसिंह तुर्माश्रित प्रभाव अभिजानंत ममभूत महेश्वरम, सब जगह में तो भगवान बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और कोई देवी देवता से इस बात को बोले नहीं और न कोई बोल सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं भगवान ने सेवा, अच्छा ये तत्वज्ञान भावे भगवान ने सेवाए अपर देवता पूजाए लोके जो स्वतंत्र बुद्धि बा प्रयोजन बुद्धि तहाई अभिधि, क्या अभिधि है? ये तत्वज्ञान के भाव से भगवान के सेवा के अलावा और दूसरे देवता की जो स्वतंत्र बुद्धि से पूजा करते हैं ये, और अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए, क्या शरीर संबंधी कोई शरीर की पुष्टि, रोग बीमारी दूर करना, किसी भी काम के लिए ये अवधि है। और उक्त त्रिविध अवधि यहाँ प्रकाश दे, तीन प्रकार अवधि ये प्रकाश दे रहे, कृष्ण एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमय प्रभु हैं, उनके सेवा में सबको अर्चन, सबका अर्चन हो जाता है, तृप्ति हो जाता है, उनके अधीन सब कुछ है, सब देवता अर्चनीय हैं, और सब देवताओं के अर्चन उसमें हो जाते हैं। इस विचार से कृष्ण की कृष्ण के जजन करना है, उपासना करना है, एकमात्र विधि है। इसमें सब प्रमाण दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छा करके उन्होंने प्रमाण देकर के इन ग्रंथ को प्रकाशित किया है कि भगवान की आराधना के अलावा आराधना करने से क्या होता है, अच्छा और श्राद्ध करने से क्या होता है, किसकी श्राद्ध करेंगे? जगत के कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में पिता की श्राद्ध करके पिता के लिए कुछ समर्पण करेंगे, पिता क्यों ग्रहण करेंगे? भगवान महाप्रसाद हैं जिन्होंने सारा जीवन ग्रहण किया, उनको अलग रूप से श्राद्ध करने कोई जरूरत नहीं है, हैं यदि कहो उनके त्रिभाग में महाप्रसाद उनके लिए समर्पण करेंगे, हैं तो वहाँ पर बतलाया भगवत नैवेद्य तुलसी और भगवान के महाप्रसाद उचित यदि उनके लिए समर्पण करेंगे तो उसमें वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न होकर आपका आशीर्वाद देंगे, यहाँ तक तो नियम है। इसके अलावा लोक संग्रह के लिए बाद में उन्होंने गृहस्थों के लिए श्राद्धादि प्रक्रिया बतलाया, किंतु एकांतिक भक्तों के लिए ये सर्वथा निषिद्ध है। अच्छा ये तो गया एक तरह का विचार, उनका उन्होंने निष्ठा विभिन्न प्रकार से दिया, तो ऐसा यदि निष्ठा नहीं हो तो कृष्ण के चरणों में उनका कोई विकृति लगेगा नहीं, नाम में रुचि होगा नहीं और तब तो विचार हृदय में आविर्भूत होगा नहीं। अच्छा इधर एक बताएं, और दूसरी तरफ उन्होंने दिखा दिया कि बचपन में भगवान भट्ट गोस्वामी अपने पितृव्य प्रबोधानंद सरस्वती के निकट कहाँ पर श्रीरंगम क्षेत्र में उनके निकट उन्होंने समस्त तत्व दर्शन की पठन पाठन किया। महापुरुष मिलने के पहले से ही प्रबोधानंद सरस्वती वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमल भट्ट इन लोगों के निकट में वो समस्त शास्त्र का अध्ययन करती कैसे रम लक्ष्मी नारायण की उपासना की पद्धति। महाप्रभु जब वहाँ गए तो महाप्रभु लगातार 4 महीने रहे। इस 4 महीने के अंदर में चातुर्मास क्या क्या तिथि आया बताओ। 4 महीने के अंदर जन्माष्टमी राधाष्टमी गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा शुरू होता है गुरु पूर्णिमा फिर झूलन बलदेव पूर्णिमा झूलन के बाद बलदेव पूर्णिमा इसके बाद में जन्माष्टमी फिर राधाष्टमी अन्नकूट महोत्सव शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा सब आया। तो महाप्रभु 4 महीना इन दसों का आस्वादन किया सब कीर्तन किया। अब महाप्रभु जहाँ साक्षात प्रभु कृपापूर्वक इन तत्व विचारों को सुना रहे हैं सबको कितना भाग्यशाली होगा सोचिए। देखो जब जन्माष्टमी आया होगा तो नंदोत्सव की बात कृष्ण के जन्म आविर्भाव की बात है और घर की समस्त कथाएं कैसे उनको स्मरण हुआ होगा और किस प्रकार से उन्होंने राधाष्टमी की वर्णन की होगी किस प्रकार से उन्होंने अन्नकूट महोत्सव का वर्णन की होगी माधवेंद्रपुरी की बात इसके पहले अन्नकूट महोत्सव जब कृष्ण ने खुद किया इन सब बातों को कीर्तन करना और गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रवण करने की जो सौभाग्य लाभ हुआ बच्चा है और क्या करते सबसे एक मुख्य लाभ करने का उपाय है आप देखेंगे सब जगह में पाद सम्मान एक ऐसे चीज है जिसे समस्त शक्ति उनको मिल जाता है। हमने बचपन में सुना टैंकी ऊपर से पानी भरता है तो नीचे से जाता है इसलिए गुरु वैष्णव के निकट झुक करके जो पैर छी करके प्रणाम करते हैं उनको उनका आशीर्वाद कृपा कितना रुक गए एक बार पैर पकड़ लो किसी जाके कितना रुक गए बिगड़ गए पैर पकड़ लेने से भूल जाएंगे क्यों उनके जो गुस्सा था ना क्रोध था वो तो निकल जाएगा सब। तो बताते हैं महाप्रभु जी की 4 महीना गोपाल ने सेवा की कैसी सेवा जब महापुरुष स्नान करने जाते कावेरी में साथ साथ कमंडलू कोपिल बहिर्वास लेके जाते जब आते गीला वस्त्र ले आते और महाप्रभु जी की समस्त सेवा यहाँ तक जब प्रसाद तक महाप्रभु विश्राम करते आप सम्मान करते और महाप्रभु के चरणों में अपने मस्तक को रख करके कभी छाती में लगा लेते इन कथाओं को सुन करके तीव्र उत्कंठा के साथ बिल्कुल छटपट करने लगे इतना प्रीति हो गया। जब महाप्रभु आने लगे आप गोपाल से रहा नहीं जाता है विरह सहन नहीं होता क्यों प्रेममय विग्रह ना सुंदर प्रेममय विग्रह। तो वेंकट भट्ट गोपाल त्रिमल भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती के ऐसा नहीं हुआ प्रबोधानंद सरस्वती तो महाप्रभु आने के साथ साथ में वो महाप्रभु पूरी के लिए आए तो वो वृंदावन के लिए चल गए महाप्रभु ने आदेश दे दिया वृंदावन जाओ मैं लोकनाथ गोस्वामी को गोपाल लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी इन दोनों को मैं पहले नवद्वीप जिला के समय ही भेज दिया इन दोनों आ गए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी सुन बड़े विचलित हुए क्यों प्रबोधानंद सरस्वती आ गए जिनके निकट वो दिव्य था महाप्रभु ने आदेश दिया जाओ हमारे पिता वैष्णव है माता वैष्णव है जब तक ये लोग रहेंगे तब तक उनकी सेवा करना और विवाह मत करना। महाप्रभु ने दो जने को ये आदेश दी थी एक तपन मिश्र को तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट को और उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी को और सीधा आदेश दिया शादी विवाह मत करना माता पिता की सेवा करना जाओ। सेवा करते रहे, किंतु कैसे सेवा, कमा करके ला करके सेवा किया? हरि कथा का कीर्तन, हरि कथा का अनुशीलन और माता पिता के साथ में वैष्णव उचित व्यवहार, समस्त वैष्णव उचित व्यवहार संबंध पूर्वक सब सेवा की, किसलिए? महाप्रभु प्रसन्न होंगे। आखिरी माता पिता, माता पिता रामानंद सुंदर वैष्णव महाप्रभु जी कृपा पूर्वक इन हरिकथा के माध्यम से लक्ष्मी नारायण के आश्चर्य से उठा करके इन लोगों को बेल बल से उठा करके वृंदावन में स्थान दे दिया। पश्चामे भावश्च न देखो विद्महे तबांगे रेणु प्रसादिकार श्री ललना चरक तपो विहाय कामन सुचिरंग बीजवता। ओहो, जो बीजवता पतिव्रता पवित्र आत्मा सुचि होकर के इतना तुम्हारे लक्ष्मी है रहती है, वो आज ग्वारिया का मार कृष्ण को बचना करने के लिए क्यों ललच गए और उनको पाने के लिए क्यों ऐसा हो गए छत्रालय, क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं? देखा किसी के पीछे भी असल के मार्ग में बंधे नहीं रह सकते, प्रेम के बिना चलता नहीं। महापुर जी ने वहां बैठा दी, ये सब बैठा कितनी मर्मांतिक है, सुन नहीं है तब कभी भज्ञ होगा। तो किस प्रकार से प्रीति के द्वारा बंधन होता है, आश्चर्य की किल्प में ना ही मोरो प्रीत्यो, किसने बताया इस बात को कि आश्चर्य शिक्रता है? कैसे? थाली लेकर के रख दिया, पानी का गिलास रख दिया, आसन लगा दिया, सब खींच करके प्रभु कृपा प्रभु आइए बैठिए, दर्जा बंद कर दिया है और बाहर आए खड़े हुए प्रभु प्रसाद पा रहे हैं। और प्रभु को नमक ज्यादा हुआ, गर्मी लग रहा है, कोई चीज और चाहिए, उनको पानी चाहिए कि उनको और भी कुछ प्रसाद चाहिए? इतना नहीं, क्यों? मर्यादा भंग हो जाएगा, प्रसाद प्राप्त में किसी को देखना नहीं चाहिए, इससे बंद कर दिया दर्जा। अच्छा, कृष्ण सहन कर रहे हैं द्वारका में, कोई भी अंदर जा सकता है, किंतु किसी को खुशी नहीं है। सखा लोग आ रहे हैं वहां करके सो गए, उदम करने लग गए, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई रगड़ रहा है, कोई सर पकड़ कर रगड़ रहा है, नाक रगड़ दिया किसी ने, बड़ा खुशी हो रहा है उनको। लेकिन द्वारका में तो ये चिंता करते से पार नहीं पाएगा, द्वारका में कोई ऐसा है नहीं, जरा जरा आकर पैर के तलों में थोड़ा सा मालिश कर दिया, धीरे 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 पैर दब दिया। अब नहीं तो जस्ता भगवान ने तो सोते नहीं, रात को कहीं गए तो सब लोग मिल करके ऐसा रगड़ा उनको, काला चमड़ा तो गोला गोला कर दी। तो ये सब मिलेगा, ऐसा जगंदर शिखिर होता है, मर्यादा है। ऐसा सुंदर वर्णन किया, एक वर्णनों को सुन करके, और साक्षात कौन वर्णन कर रहे हैं? गोपाल भट्ट को संघ पितृव्य सबका चित्तवृत्ति उपयोग, और प्रवधान में सबसे सन्यासी थे ब्राह्मण संप्रदाय की। बस जो भी कोई कहे या प्रश्न करे, सरस्वती उपाधि केवल मात्र मायावादी संप्रदाय में मिलता है, वैष्णव संप्रदाय में सरस्वती नहीं है। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर सामान्य संप्रदाय के संन्यास के समस्त विचार आचार समस्त वहाँ जा करके सब लिख करके पढ़ करके देख करके तब आकर के प्रभुपाद जी ने संन्यास का प्रचलन शुरू किया। उसके 10 नामी सन्यासी, वैष्णव के 108 नामी सन्यासी, ये सब त्रिदंड प्रथा प्रचलन किया। तो प्रधान सरस्वती त्रिदंडी वैष्णव सन्यासी, अब वो तो वृंदावन आ गए। कुछ दिनों के बाद गोपाल अब रहा नहीं गया, आ गए महाप्रभु जी ने आदेश दिया, जाओ। कैसे आदेश? डायरेक्ट आदेश, स्वप्नादेश दे दी, जाओ। सुना है महाप्रभु ने, गोपाल आ गया वृंदावन में, महाप्रभु ने अपना डोर और कोपिनर लेकर के भेज दिया, जाओ कि ये मीनिंग संन्यास दे दिया। आज तक किसी को ये भाग्य मिला नहीं, डोर कोपिनर आते ही मस्तक पर लगा करके वो पूजा के जगह पर रख दिया, और उनका प्रतिभा मूर्ति के रूप में संन्यास ग्रहण कर लिया। आज भी राधामन मंदिर में महाप्रभु डोर कोपिनर रखे हुए पूजा होता है, उनके बिना उनकी पूजा के बिना पूजा नहीं कुछ। तो इतना गोपाल भट्टों को चंद्र भाग्य उनको द्रौपदी भेज दी, किंतु बड़े दुखी, हाय महापुर जी मुझे वृंदावन भाग दी, किंतु मैं तो उनकी सेवा नहीं कर पाया, संग नहीं पाया। रोते 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 दिन रात एक कर देते, बीरा के मारे वृंदावन वर्णन भ्रमण करते, सर्वदानंद सरस्वती के निकट जाकर के उन्होंने सब सर्वदानंद सरस्वती ने लिखा साधर सुधरने की समस्त श्लोकों को एक एक करके बैठा करते गोदी में बैठा बैठा के सब सुनते तन्मय हो जाते। इसके बाद में क्या करते, कृष्ण चंद्रामृतम वृंदावन महिमामृतम और विभिन्न प्रकार उन्हें बहुत ग्रंथ है सर्वदानंद सरस्वती जी ने तैयार की। जब तैयारी की गोपाल भट्ट को श्रवण करते और उसको संस्कार सुधारने की जरूरत नहीं, केवल अक्षात में थोड़ा उसको रूप धारण दे देते, रूप दे देते। देखिए ग्रंथ के रूप में प्रकाश कर प्रतिदिन विघा से छटपट आते, हाय महाप्रभु का दर्शन नहीं पाया, कैसे होगा। महाप्रभु जी ने उनको जो प्रसराज महाभाव रूप दर्शन दिया गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और एक ही रूप में, ऐसे चिंतन करते 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 छटपट छटपट करते, हाय कब दर्शन होगा। महाप्रभु ने एक दिन उनको दर्शन दिया, दर्शन देकर बोले क्यों विरोध में छटपट आता है, मैं तो तेरे पास सब समय हूँ। तो देखा अब वो सारे ग्राम नहीं है, महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। फिर देखा थोड़ी देर में महाप्रभु नहीं है, राधारमन के रूप में प्रकट हो गए। तो बोले जो मैं राधारमन हूँ वही मैं महाप्रभु हूँ, नहीं हूँ मैं और वो अलग नहीं हूँ। जब से राधारमन को बक्षस्थल में रख करके स्वयं करना पूजा करना वो अश्वर्य मार्ग में नहीं, लाल हराना संपूर्ण सेवा करने लगे। करते 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 जब वृद्धावस्था आया तो उनके शिष्य थे जिनका नाम था एक दामोदर दास, वो थे देहरादून साइड के ब्राह्मण, तेजी उनके सेवा में नियुक्त थे। फिर उनके हाथ में सेवा देकर के प्रभु नित्य लीला में गए, वो दूरते दूरते उनको जो सेवक मिला नहीं वो करे क्या, मैं क्या करूँ, राधारमन को किसको दे जाऊँ, मेरे भी तो जाना है। फिर उनके भाई को बुलाया, अग्रस्त पूर्वाश्रम को भी दीक्षित थे गोपाल भट्ट को स्वामी जी,